ऐसे तो अंधे तो नहीं आ रहे, दो तीन महीने तो ट्रेनिंग कर चुके हैं पहले, इतनी दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रखते हैं। इनके पैमाने, इनके जो कंपासिस हैं, वो नहीं बता रहे कोई तूफान आने वाला है, कोई गुर्दगुबार उठने वाला है। ऐसा तूफान जो हेलीकॉप्टरों को उड़ा के रख दे, टकरा के रख दे, वो तूफान इलाही तूफान है, पोशीदा रहता है, खुफिया रहता है। आज भी यूमिनों ने बिल गए, अलाम इकबाल ने कहा, आज भी हो जो इब्राहिम का ईमां पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। मैंने यहीं पर जो है ये आयतुल्लाह जो है मरहूम बाहुद्दीनी जो है अल्लाहु मकामहू का, मैंने ये वाकया मेरे ख्याल में यहाँ नकल किया है प्राइवेट किसी निशिस्त में या बहरहाल बिलउमूम में। आगा फरमाते हैं कि वो मट्टी का घर था उनका, आयतुल्लाह बाहुद्दीनी कुछ साल पहले फौत हो चुके हैं। उनकी किताब है नर्दबान आसमान, आसमान की सीढ़ी, आसमान की सीढ़ी नाम की किताब है उनकी। क्योंकि उलमा और जो औराफा है वो हिकमतें समझते हैं, हम हिकमतों को नहीं समझते। सिर्फ इस नुक्ते कह रहे हैं कि अपने घर की तरफ बाहर से गली से अपने घर की जानिब आ रहे थे, बुजुर्ग उम्र थे, दीवार पे हाथ लगाते हुए आ रहे थे, मिट्टी के ईंटों की दीवार थी, वहां पे कोई बिच्छू बैठा हुआ था, उसने जो डस लिया, साथ में जो अमराही खड़े थे अंदाजा लगा लिया उन्होंने मुख्तसरन कि आगा को जो है कोई तकलीफ हो गई है, बिच्छू ने डस लिया है, आगा अस्पताल चले जाएं, ये तो जहरीला है, खतरनाक है। लेकिन आगा जो है उनको टालते रहे टालते रहे, दरस दे दिए, दरस दे रहे हैं कि दौरान दरस एहसास कर रहे हैं, तालिबे इल्म महसूस कर रहे हैं कि अंदरूनी तौर पर आगा साहब एक तकलीफ से गुजर रहे हैं। दरस खत्म होता है फिर तालिबे इल्म कहते हैं आगा साहब जो है अस्पताल चले जाए, बिच्छू जहरीला होगा, आपके लिए नुकसान। जवाब नहीं देते, खामोशी जो होती बात। अगले दिन, अगला दिन आ जाता है, आगा साहब की तबीयत बहरहाल ठीक है, कोई इतनी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आगा साहब अगले दिन दर्स में शरीफ हो गए, दर्स हो गया, चले गए। जो खास तालिबे इल्म होते हैं, जो हर उस्ताद के खास जो है शागिर्द होते हैं, आइमा अलैहिस्सलाम के खास शागिर्द होते थे, जिनसे अपने राजों को शेयर करते थे आइमा अलैहिस्सलाम, हर किसी से राज। असाब बहुत सारे थे शागिर्द मकतब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम में, वो सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में मौजूद, जो उलूम के इसरार होते थे कायनात के, जो बर्दाश्त करने का मादा रखते थे रूहानी एतबार से, फिक्री एतबार से, अकीदती एतबार से। एक आदमी के सामने मुमकिन है एक हकीकत खोल दी जाए, इल्मी कोई बहस नहीं खोल दी जाए, वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाए, उल्टा इसके कि इसके इल्म में इजाफा हो जाए। कहा कि ऐसी चीजों के बारे में सवाल न करो, इजा तुझी हुकुम तुसी हुकुम, जवाब दे दिया जाए तो फिर तुम परेशान हो जाओ, न सिर्फ परेशान हो जाओ आप दाने वाले के ऊपर भी हमला कर बैठो, कहो क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए फरमाया मौलाना कल मन्नास वाला कद्री उकूलिहिम, लोगों की जहनी सतह के मुताबिक बात करो, हर किसी में इल्मी और गहरी बात, इसरार और रमूज की बात बर्दाश्त करने का मादा नहीं है। लिहाजा वहां पर भी इस आलिम दीन के सामने शागिर्द तो बहुत सारे थे, सारे शागिर्दों को यह बात नहीं बताया, जो खास शागिर्द थे जिनको आगा भी पहचानते हैं कि इनमें ये मादा है। तो उस वक्त आयतुल्लाह सैयद बाहुद्दीनी उस वक्त कहने लगे कि बात दरअसल ये है कि ये बिच्चू जो था मामूर खुदा बुत का, ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया था, ये अपनी ड्यूटी निभा रहा था, ड्यूटी ये थी, मेरे ऊपर फालिज का अटैक होने वाला था और अल्लाह ताला चाह रहा था कि मैं फालिज की अटैक मुझ पर न हो जाए, लेकिन तबीई असबाब फालिज के अटैक के लिए मेरे जिस्म के अंदर फराहम हो चुके थे। अटैक के जरासीम तबीई तौर पर जो एक नेचुरल प्रोसेस है उसके तहत मेरे जिस्म में मौजूद थे, लेकिन परवरदिगार आलम की मशीयत ये थी कि मुझे फालिज का अटैक ना हो जाए। बिच्छू को भेजा, छोटी सी तकलीफ में मुझे मुब्तला कर लिया ताकि बड़ी तकलीफ से मैं बच सकूं। तो हम बहुत से औकात क्या होता है, हम चीजें नहीं समझते हैं, तो हम बहुत से औकात क्या होता है, हम चीजें नहीं समझते हैं। अगर बात इधर आ गई है तो ये मामूर खुदा बूत खुदा की ड्यूटी निभा रहा था। मुझे एक और वाकया भी याद आया, अगर आपकी तवज्जोहात है तो वो भी सुना देते हैं। मैं मुख्तसर करता हूँ इस वाकये के अंदर से, असल में हमने ये गैबी इमदाद खास मौके और खास अफराद भी जारी है ना, ये गैबी इमदाद यूमिनू ना बिलगैब, आज भी तो गैब पर ईमान रखना है ना, उस वक्त तो नहीं था सिर्फ, आज भी हम क्या करें, अल्लादीना यूमिनू ना बिलगैब, हाँ जी हम यूमिनू ना बिलगैब, अल्हम्दुलिल्लाह हम गैब पे ईमान रखने वाले, और उस गैब की जो है सबसे एक बड़ी निशानी हमारे बारहवें सरकार है यूमिनू ना बिलगैब, ये पूरा जो है गैब का सिलसिला और तसलसल है। आप जानते हैं वाकया आ गया, मैं सुना रहा हूँ, कसद व इरादा नहीं था। आप जानते हैं कि ईरान में इनकलाब आने के बाद कुछ जो है वहां पर ऐसे डिप्लोमेट्स टाइप के जासूस थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, यानी उनको एक तरह से कस्टडी में रखा गया था। उनको छुड़ाने के लिए सऊदी अरब के सहरा में वहां पर जो है अमेरिकी फौजियों ने, फजाइया ने, मैरिन्स ने वहां पर पूरा एक प्रैक्टिस किया, पूरा वो डिजाइन बनाया तेहरान का, चाहिए जी ये इलाका है, यहाँ पर हमारे होस्टेजेस बैठे हुए, हमने जाके एक ऐसा कमांडो एक्शन करना है जिसके जरिए इनको छुड़ा के हमने लेके जाना है भारत। ये पूरी तैयारी कर ली। उसके बाद खुफिया तरीके से ईरान का एक सहराई इलाका था, सहराई इलाका तबस नाम है उसका, उस तबस में उन्होंने अपने कुछ हेलीकॉप्टर्स और कमांडोज को उतार दिए। अचानक तैयारों ने आना था, इधर से हेलीकॉप्टरों ने उठना था, इन कमांडोज को लेके तेहरान में आना था और वहां से उन्होंने उठा के चले जाना था। ये खुफिया प्लान था। इस प्लान के तहत कई महीने सऊदी अरब ने ग्राउंड दिया था, उनके सहरा में ट्रेनिंग हो चुकी थी प्रैक्टिकली, एक क्या कहते हैं उन्होंने वो वहां पर जो कुछ करना था एक नक्शा बना के कर लिया था। आखिरी लम्हात में जिस वक्त उनकी कमांडोज और हेलीकॉप्टरें तबस के सहरा में पहुंच चुके थे, अब जो है ईरानियों को उस वक्त होश आ गया, वो तो इंकलाब के पहले जो है जोश में गुम थे, अब होश आया जी तो उधर तो कोई खबर है, वहां पर तो फौजें आ चुकी हैं, मसला बड़ा संगीन और खतरनाक है। कहते सुबह फजर तुलू होके तकरीबन सूरज निकलने वाला था और इमाम खुमैनी जो है सहन में अपना टहल रहे थे सुबह सुबह, उस वक्त जो है उनका बेटा सैयद अहमद खुमैनी आते हैं घबराए हुए और उनके पीछे जो है जिम्मेदारान होते हैं और कहते हैं कि एक बुरी खबर है। क्या है? कह रहे हैं कि अमरीका अपनी कैदियों को छुड़ाने के लिए फौज लेके तबस के सहरा में आ चुका है। कहते इमाम खुमैनी यूं मुड़े, तस्बीह हाथ में थी, एक उनका मखसूस स्टाइल था, हाथ दोनों पीछे रख के टहल रहे होते थे, आसमान की तरफ नगाह दौड़ाई और कहा कुछ भी नहीं होगा, परेशान मत हो जाओ, आराम से बैठे रहो, परेशान होने की जरूरत ही नहीं। कहा अमेरिका हिचकारी नमी तो नदबोकना, अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता है। कह रहे बैठ गए अंदर, थोड़ी देर के बाद देखा तबस के सहरा से धुआं उठ रहा है, तोड़ के चले गए तो वहां फौजी भी जले हैं, उनके बहुत सारी लाशें पड़ी हैं, कुछ हेलीकॉप्टरों के ढांचे पड़े हैं, वहां लगता है कि कोई बहुत बड़ा मार्का हुआ है और उस मार्के में वो सारे तितर बितर हो चुके हैं, जलकर खाक बन चुके हैं, राख बन चुके हैं। खुलासा, अगर अब देखे ये बात यहां तक तो आ गई, बात खत्म हो गई। अगले दिन पब्लिक से इमाम खुमैनी खिताब फरमा रहे हैं, अपने खुतबे में फिर जो जुमले इरशाद फरमाया वो आज तक रिकॉर्डेड है, वीडियो भी मौजूद है, उसकी ऑडियो भी मौजूद है, दुनिया हैरान है। उसके ऊपर जो है बाद में उस जर्नल हाइजर ने किताब लिखी है, उस किताब के अंदर भी जुमले लिखता है, मैं बताता हूँ क्या जुमले लिखता है वो। इमाम खुमैनी वहां पर गुफ्तगु करते हुए कहता है, कहते हैं कि हवा पेमा ये आगा कातर रा नाबूद कर, कहते कातर के हेलीकॉप्टरों को और जहाजों को किसने तबाह कर दिया, माबूदी, कहते हमने किया नहीं, शनहा करदन का रेत के जर्रात ने किया। फिर कहता शनहा मामूर खुदा बुदन, ये जो रेत के जर्रे थे ये खुदा की तरफ से ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, इनको भेजा गया था, वहां तूफान आया था, सहराए तबस में हुआ या क्या कि ये फौजी बैठ गए हेलीकॉप्टरों में, उठने लगी हेलीकॉप्टरें तो इतनी एक ऐसी गिर्द गुबार और अचानक तूफान आया। जाहिर है ये ऑपरेशन कर रहे हैं, मौसमियात को देख रहे हैं, आब हवा को देख रहे हैं, हर चीज देख रहे हैं ना, ऐसे तो अंधे तो नहीं आ रहे, दो तीन महीने तो ट्रेनिंग कर चुके हैं पहले, इतनी दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रखते हैं, इनके पैमाने इनके जो कंपासिस हैं वो नहीं बता रहे कोई तूफान आने वाला है, कोई गिर्द गुबार उठने वाला है, ऐसा तूफान जो हेलीकॉप्टरों को उड़ा के रख दे, टकरा के रख दे, वो तूफान इलाही तूफान है, पोशीदा रहता है, खुफिया रहता है, अचानक हेलीकॉप्टरें यहां से उड़ती हैं, वहां से तूफान आता है, जहाजें आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद नतीजा क्या निकलता है, चंद एक वो जनरल हाइजर बचता है और चंद एक फौजी बचते हैं, बाकी सब जल के राख हो जाते हैं, दूसरे हेलीकॉप्टर आता है रेस्क्यू करके ये लोग चले जाते हैं। अब जनरल हाइजर किताब में, ये किताब मौजूद है अभी भी, आप गूगल करेंगे गूगल भी मिल जाएगा, वहां पर कहता है हाँ हम जान चुके हैं, उस वक्त हमें एहसास हो गया कि खुदा और हजरत ईसा हमारे साथ नहीं थे, खुमैनी के साथ थे। ये किताब के अंदर जनरल लिख रहा है, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, बेशुमार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब बात यहां तक आ गई है इस मूसवी सैयद अजीम सैयद के बारे में, तो मैं एक और पहले वाले अजीम सैयद का एक और जुमला नकल करता हूँ। आज भी यूमिनों ने बिल गए, अलाम इकबाल ने कहा आज भी हो जो इब्राहिम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज गुलिस्तान पैदा, आज भी ऐसा हो सकता है, यकीनन होना हम सबके साथ हो सकता है, غیب بند نہیں ہو چکا، غیب کا سلسلہ جاری ہے۔ پروردگار عالم وعدہ ہے قرآن مجید میں، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدام، آپ راہ خدا میں نکلو گے مدد آئے گی ہماری، مدد کر ہم دیکھ رہے ہیں، مدد کو بھی دیکھ رہے ہیں، مختلف جگہوں کے اندر ہم مدد کو دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں امام خمینی کو جلا وطن کیا گیا تھا، ترکی میں تھے، عراق میں، یہ کوئی ملک تیار نہیں قبول کرنے کے لیے، ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے، راستے میں کہیں کوئی ٹارگٹ کلنگ ہو سکتی ہے، مار دیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہی آیت اللہ سید بہاؤدینی ہے، آیت اللہ سید بہاؤدینی نے پیغام بھیجا کن کو؟ امام خمینی کی فیملی کو، کہا کہ میری طرف سے پیغام دے دے امام خمینی کو، فیملی کو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، من در عالم مکاشف ہے۔ میں یہ جملے شاید نہ کہہ سکوں، یہ نردبان آسمان کتاب ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ کہتا من در عالم مکاشف ہے با جد ام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ملاقات کر دم، کہہ میں نے مکاشفے میں اپنی دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کا میں نے شرف پایا ہے، اور انہوں نے مجھے فرمایا ہے کہ باودینی ان کی فیملی کو خبر دو کہ وہ پریشان نہ ہو جائیں، آغا روح اللہ بے شک جلا وطن ہوں گے لیکن واپس آئیں گے، فاتح بن کے آئیں گے، اور وہ حکومت جو میرے بیٹے امام مہدی کے آرزوؤں کی حکومت ہوگی اسے وہ صلوات بر محمد و آلہ، یہ اس کتاب کے اندر ہے، اس حکومت کا قیام کریں گے اور اس حکومت کا علم اس سید کے ہاتھ میں دیں گے جس نے اس علم کو امام زمانہ کے ہاتھ میں دینا ہے۔ تو یہ آیت اللہ بہاؤدینی کا میں نے مکاشفہ میں اپنی دادی سے، بہت سارے اس دن کے واقعات ہیں آیت اللہ بہاؤدینی کے، جس طرح آیت اللہ بہجت کے ہیں بہت سارے واقعات۔ خلاصہ اس کا کیا ہے، آج بھی دیکھو قرآن و عترت کا فیض آج بھی جاری ہے، ہم یومنون بالغیب ہیں اور ہمیں اپنے غیب کے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے، لہذا جب راہ خدا میں کچھ مال سے نکالنا پڑے، حتیٰ راہ خدا میں وقت نکالنا پڑتا ہے، راہ خدا میں کبھی خون دینا پڑتا ہے، چاہے کسی بیمار کے علاج کے لیے خون دینا پڑتا ہے یا کہیں پر جو ہے مقدسات کی دفاع کے لیے اپنی گردن کٹوانی پڑتی ہے جیسے کہ ہمارے جوان کر رہے ہیں، جھجکنا نہیں چاہیے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، سارے تصدق اور انفاق کی جو ہے